लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिरकी। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गौदाते इत एजुलताते की शुरुआत की है। यह संत पापा फ्रांसिस का तीसरा प्रेरितिक प्रबोधन है जो 9 अप्रैल 2018 को प्रकाशित हुआ था। यह हम सबों के लिए वर्तमान विश्व में पवित्रता हेतु एक निमंत्रण है। अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस हमारा ध्यान इस ओर केंद्रित कराना चाहते हैं कि हम वर्तमान परिवेश में जहां कहीं भी हैं अपने में पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि आइए हम पवित्रता के संकेतों से प्रेरित हों जो प्रभु हमें उन लोगों में सबसे विनम्र सदस्यों के माध्यम से दिखलाते हैं जो मसीह के प्रेरितिक कार्यों में सहभागी होते हैं, जिसका जीवित साक्ष्य वे विभिन्न स्थानों में देते हैं, विशेष रूप से अपने विश्वास के जीवन और करुणामय कार्यों के माध्यम। हमें इस तथ्य पर विचार करना चाहिए, जैसे कि क्रूस के संत तेरेसा बेनेडिक्ता हमें अपने सुझाव में कहती हैं, वास्तविक इतिहास कई लोगों के द्वारा लिखा जाता है। वे लिखती हैं, भविष्यवाणी और पवित्रता के महानतम व्यक्तित्व सबसे अंधेरी रात से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके जीवन का अधिकांश भाग रहस्यमय जीवन की प्रारंभिक धारा अदृश्य रहती है। निश्चित रूप से विश्व इतिहास में सबसे निर्णायक चीजें उन आत्माओं द्वारा काफी हद तक सह निर्धारित होते हैं जिनका इतिहास की किताब में कभी उल्लेख नहीं किया गया है, और हम केवल उन आत्माओं के बारे में उस दिन पता लगाएंगे जब रहस्यमय बातें प्रकट हो जाएंगी जो हमारे जीवन को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं। पवित्रता कलिस्य का सबसे आकर्षित चेहरा है, लेकिन कलिस्य के बाहर भी और बहुत से अलग संदर्भों में भी पवित्र आत्मा उनकी उपस्थिति के संकेत देते हैं जो यीशु ख्रिस्त के अनुयायियों की मदद करते हैं। संत पापा योहन पौलुस द्वितीय हमें इस बात की याद दिलाते हैं। लोह गवाह के रूप में मसीह का साक्षी कैथोलिक कलिसिय, ऑर्थोडॉक्स, एंग्लिकन और प्रोटेस्टेंट में एक सामान्य विरासत बन गई है। वर्ष 2000 की महान जयंती के दौरान कोलोसियम में आयोजित कलिसियाई एकता हेतु वार्ता के विश्वव्यापी स्मरणोत्सव में उन्होंने कहा कि शहादत हमारे लिए एक विरासत है जो विभाजनों के कारणों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली रूप से अपनी बातों को हमारे लिए कहती है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि इस प्रेरितिक प्रबोधन में मैं मुख्य रूप से पवित्रता की बुलाहट पर जोर दूंगा, जिसे ईश्वर हम सबों को एक निमंत्रण स्वरूप प्रदान करते हैं। यह निमंत्रण हम सबों के लिए व्यक्तिगत रूप में दिया गया है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। द्वितीय वैटिकन महासभा इसके विषय में स्पष्ट रूप से कहती है, इतने सारे और महान उद्धार के साधनों की उपस्थिति में सभी विश्वासी, चाहे उनकी स्थिति और अवस्था कैसे भी क्यों न हो, हर कोई प्रभु द्वारा बुलाए गए हैं, जिससे हम अपने तरीके से उस पूर्ण पवित्रता की प्राप्ति करें जैसे कि हम स्वयं अपने स्वर्गीय पिता को पाते हैं। वैटिकन द्वितीय महासभा कहती है, हर कोई अपने तरीके से। हम पवित्रता के उन उदाहरणों और उन बातों से हतोत्साहित ना हों जिसे प्राप्त करना हमारे लिए असंभव लगता है। कुछ साक्ष्य हैं जो हमारे लिए सहज, सहायक और प्रेरणादायक हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ हमारे लिए यह नहीं कि हम उनका नकल करें, क्योंकि वे भी हमें उन खास बातों से परे ले जा सकती हैं जो ईश्वर के मन में हमारे लिए हैं। हर विश्वासी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी राह के बारे में चिंतन करे जो उसके लिए अपने को बेहतर तरीके से व्यक्त करने में मदद करता हो। वे व्यक्तिगत उपहार जिसे ईश्वर ने उनके हृदय में अंकित किया है, न कि निराशपूर्ण तरीके से उन बातों के लिए प्रयास करना जो उसके बस की बात नहीं है। हम सभी अपने में साक्ष्य देने हेतु बुलाए गए हैं। वहीं बहुत सारे वास्तविक रूप हैं जिनके माध्यम हम अपना साक्ष्य दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में महान रहस्यवादी क्रूस के संत योहन अपने आध्यात्मिक गीत में लिखते हैं कि वे एक सख्त नियमों का अनुपालन करने से दूर रहने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि उनके पदों की संरचना इसलिए हुई जिससे सभी कोई जिस परिस्थिति में है उससे लाभान्वित हो सके, क्योंकि ईश्वर अपने जीवन का संचार हमारे साथ अलग अलग रूपों में करते हैं। श्रोताओ, इन रूपों के संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि महिला की प्रतिभा अपने में नारी पवित्रता के शैलियों में से एक है जो ईश्वरीय पवित्रता को एक विशेष रूप में दुनिया में प्रतिबिंबित करता है। वास्तव में उन परिस्थितियों में जब नारियां अपने में सबसे अधिक परित्यक्त रहीं या उन्हें अधिकतम रूप में नजरअंदाज किया जाता है, तो पवित्र आत्मा वैसी परिस्थितियों में संतों को हमारे लिए देते हैं जिनके आध्यात्मिक गुण कलिसिया में महत्वपूर्ण नवीनता लाने हेतु हमारी मदद करते हैं। इस संदर्भ में हम बिगन के सेंट हिल्डेगार्ड, संत ब्रिजेट, सियेना के संत कैथरीन, अविला की संत टेरेसा और लिक्सियस की संत टेरेसा के बारे में कह सकते हैं। संत पापा कहते हैं, लेकिन मैं उन भूले या अज्ञात नारियों के बारे में सोचता हूँ जो सभी जगह कहीं भी थे, अपनी तरह से परिवारों और समुदायों को अपने साक्ष्यों के द्वारा बनाए रखते या उनमें परिवर्तन लाते हैं। यह हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण बने और हमें ईश्वर की अद्वितीय योजना का आलिंगन करने में मदद करे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए संसार के शुरू से ही तैयार किया है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको जाना और तुम्हें पवित्र किया है। श्रोताओ, पवित्र होने के लिए हमें धर्माध्यक्ष, पुरोहित या एक धर्म संघी बनने की जरूरत नहीं है। हम बहुत बार यह सोचते हैं कि पवित्रता केवल उनके लिए है जो अपने को सामान्य जीवन से अलग करते हुए अपना समय अधिक प्रार्थना करने में व्यतीत करते हैं। ऐसा नहीं है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हम जहाँ कहीं भी रहते हों, हम सभी अपने जीवन में अपने कार्यों को प्रेमपूर्ण तरीके से करते हुए साक्ष्य देते हुए अपने में पवित्र बनने हेतु बुलाए गए हैं। क्या आप समर्पित जीवन हेतु बुलाए गए हैं? आप अपने जीवन समर्पण को खुशी पूर्वक जीते हुए पवित्र होने हेतु बुलाए गए हैं? क्या आप विवाहित हैं? आप अपने पति या पत्नी को प्रेम करते हुए उसकी चिंता करते हुए जैसे कि यीशु ख्रिस्त ने कलीसिया के लिए किया अपने में पवित्र हो सकते हैं? क्या आप जीविका हेतु कार्य करते हैं? आप अपने भाई बहनों के लिए अपनी सेवा के कार्य को निष्ठापूर्ण ढंग से करते हुए पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप माता पिता या दादा दादी हैं? आप धैर्य पूर्वक अपने बच्चों को यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करने की शिक्षा देते हुए पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप एक अधिकारी के पद पर स्थापित हैं? आप अपने स्वार्थ का परित्याग कर जन सामान्य की भलाई हेतु कार्य करते हुए पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं? श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गौदाते एत एसुलताते पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने दक्षिण सूडान में बाढ़ पीड़ितों एवं ग्रीस के बड़े क्षेत्र में लगी आग से तबाह लोगों की मदद की है। संत पापा फ्रांसिस लगातार आध्यात्मिक और मानवीय रूप से उन लोगों के निकट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनका जीवन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। वैटिकन के समग्र मानव विकास परिषद ने सोमवार को घोषित किया कि संत पापा ने ग्रीस और दक्षिण सूडान के लोगों के प्रति चिंता एवं सहानुभूति व्यक्त की है। परिषद ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि संत पापा फ्रांसिस ने दक्षिण सूडान के लिए $75,000 भेजा है। सहायता अगस्त में भारी बारिश एवं विनाशकारी बाढ़ के बाद दी गई है जिसने 12,000 से अधिक लोगों को विस्थापित किया है और लगभग 6,000 घरों को नष्ट कर दिया है। यूएन ने अनुमान लगाया है कि पूरे 6 राज्यों में करीब 4,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असामान्य रूप से भारी मौसमी बारिश के कारण नदियां अपने किनारों पर बहने लगीं, जिससे नील नदी घाटी और अन्य अर्द्रभूमि क्षेत्रों के साथ विशाल क्षेत्र एवं बस्तियां जलमग्न हो गईं। पोप फ्रांसिस की आर्थिक मदद को समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधम पीठ परिषद के द्वारा मलाकल धम प्रांत को भेजा गया है। फंड के द्वारा धम प्रांत के उन लोगों की मदद की जाएगी जो त्रासदी से प्रभावित हैं। संत पापा ने आर्थिक मदद का दूसरा हिस्सा ग्रीस के लोगों को प्रदान किया है जहां अगस्त में आग लगी थी और जिसने कई क्षेत्रों को तबाह कर दिया है। ग्रीस में भीषण गर्मी से आग लग गई थी। आग ने लगभग 1,00,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को नष्ट कर दिया है और करीब 3 लोगों की मौत हो गई है। संत पापा फ्रांसिस ने पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए कारितास हेलास को आर्थिक मदद हेतु $50,000 भेजा है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अनुदान राशि के द्वारा संत पापा फ्रांसिस प्रभावित लोगों के प्रति आध्यात्मिक सामीप्य और पितातुल्य प्रोत्साहन व्यक्त करना चाहते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने 5 अक्टूबर को धर्म एवं शिक्षा की सभा में भाग ले रहे प्रतिभागियों से मुलाकात की। उन्होंने विभिन्न परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी शिक्षकों के प्रति अपना सामीप्य एवं आभार व्यक्त किया। यूनेस्को द्वारा स्थापित विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर धर्म एवं शिक्षा की सभा में भाग ले रहे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए संत पापा ने शिक्षा में धार्मिक परंपराओं की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा, आज हम यह बताना चाहते हैं कि हमारी धार्मिक परंपराएं जिन्होंने हमेशा स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है, और प्रत्येक व्यक्ति को समग्र रूप से शिक्षित करने के अपने मिशन की पुष्टि की है। संत पापा ने दो वर्षों पहले 12 सितंबर 2019 को शिक्षा जगत से जुड़े लोगों से की गई अपनी अपील दोहराई, जिसमें उन्होंने इस बात पर वार्ता करने का आह्वान किया था कि हम किस तरह के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं तथा सभी की प्रतिभाओं को सुनियोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया था, क्योंकि सभी परिवर्तनों के लिए एक शैक्षणिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य एक नई सार्वभौमिक एकजुटता एवं एक अधिक स्वागत करने वाला समाज विकसित करना है। उन्होंने कहा, यही कारण है कि मैं शिक्षा पर वैश्विक समझौता को प्रोत्साहन देता हूं, जिससे हम युवा लोगों के लिए और उनके साथ हमारे समर्पण को फिर से जागृत करने हेतु एक अधिक खुली और समावेशी शिक्षा के लिए हमारे जुनून को नवीकृत कर सकें, जिसमें धैर्यपूर्ण सुनना, रचनात्मक संवाद और बेहतर आपसी समझ शामिल हैं। उन्होंने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि हम विस्तृत शैक्षणिक संबंध में अपने प्रयासों को जोड़ सकें, परिपक्व व्यक्तियों को तैयार कर सकें जो विभाजन एवं शत्रुता से ऊपर उठने में सक्षम हों तथा एक अधिक भाईचारापूर्ण मानवता के लिए संबंधों की रक्षा कर सकें। तब संत पापा ने अधिक भाईचारापूर्ण समाज के निर्माण का उपाय बतलाते हुए कहा कि यदि हम एक भाईचारापूर्ण विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें युवाओं को शिक्षित करना होगा, उन्हें स्वीकार करना, प्रोत्साहन देना और प्यार करना होगा, चाहे वे किसी भी स्थान के क्यों ना हों। मौलिक सिद्धांत अपने आप को जाने ने हमेशा शिक्षा का मार्गदर्शन किया है, फिर भी हमें मूल सिद्धांत अपने भाई या बहन को जाने को अनदेखा नहीं करना चाहिए। सृष्टि को जाने तभी आम घर की देखभाल करने की शिक्षा दी जा सकेगी, और परमात्मा को जाने ताकि जीवन के महान रहस्य की शिक्षा पा सकेंगे। संत पापा ने कहा कि हमें समग्र विकास सुनिश्चित करना है, ताकि हम अपने बारे, भाई बहनों, सृष्टि और ईश्वर के बारे जान सकेंगे। हम उस सच्चाई के बारे युवाओं को बतलाने से नहीं चूकेंगे जो जीवन को अर्थ प्रदान करता है। धर्मों एवं शिक्षा के बीच संबंध पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इनके बीच गहरा संबंध है। अतीत की तरह हमारे समय में भी हमारी धार्मिक परंपराओं की बुद्धि और मानवता के साथ हम एक नई शैक्षणिक गतिविधि के लिए प्रोत्साहन बनना चाहते हैं, जो हमारी दुनिया में सार्वभौमिक भाईचारा को आगे बढ़ा सके। यदि अतीत में हमारी पृथकताएं हमें अलग करती थीं, तो आज हम उन्हें ईश्वर के पास आने के विभिन्न रास्तों के रूप में समृद्ध पाते हैं। यही कारण है कि शिक्षा हमें मदद देती है कि हम हिंसा और दूसरे धर्मों के प्रति घृणा को न्याय संगत ठहराने के लिए कभी ईश्वर का नाम ना लें, हर प्रकार के चरमपंथ की निंदा करें तथा हर व्यक्ति के चुनाव करने और अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने के अधिकार की रक्षा कर सकें। अतीत में धर्म के नाम पर जाति, संस्कृति, राजनीति और अल्पसंख्यकों में मतभेद होता था, जबकि आज हम हर व्यक्ति की पहचान और प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते हैं तथा हर युवा को सिखाना चाहते हैं कि वे बिना भेदभाव के सभी लोगों को स्वीकार करें। यही कारण है कि शिक्षा हमें दूसरे व्यक्ति को बिना न्याय अथवा निंदा किए स्वीकार करने की शिक्षा देती है। यदि अतीत में महिलाओं, बच्चों और सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों का हमेशा सम्मान नहीं किया जाता था, आज हम इन अधिकारों के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं और युवाओं को आवाजहीन लोगों के लिए आवाज बनना सिखा रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा हमें हर व्यक्ति की शारीरिक हिंसा का बहिष्कार करने और नैतिक अखंडता के लिए प्रेरित करती है। अमेरिका की कलीसिया जब वार्षिक जीवन सम्मान महीना मना रही है, अमेरिकी धर्मदर्शियों ने कैथलिकों को प्रोत्साहन दिया है कि वे संत जोसेफ के पदचिन्हों पर चलते हुए मानव जीवन की रक्षा करें। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।